चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय छह सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर चंद्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्कों के आधार कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु बाबा वेद में आठार नाला से जगन्नाथ मंदिर गए, वहां जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वे भगवत प्रेम वश अत्यंत व्याकुल हो उठे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भगवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वे भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े, तब दैववश सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब सुरक्षा कर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उसे मना कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता तथा भगवत प्रेम के कारण उनके शरीर में उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे। तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने का समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी तथा कुछ शिष्यों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में ही अपने घर ले आए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान में लिटा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की परीक्षा करने पर सार्वभौम ने देखा कि न तो उनका उदर गति कर रहा है, न ही वे श्वास ले रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर भट्टाचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे। भट्टाचार्य ने बारीक रूही का पोहा लिया और उसे महाप्रभु के नासिका के सामने रखा। जब उन्होंने देखा कि रूही कुछ कुछ हिल रही है, तो उन्हें कुछ आशा बंधी। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा, यह दिव्य उर्मी पूर्ण परिवर्तन सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को समझते देर न लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भावावेग सुदीप्त भाव हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीरों में ही दिखा करता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरूढ़ भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह बड़ा आश्चर्यजनक है, भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है। जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे। वहां पर इन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बातें करते सुना, जो जगन्नाथपुरी आया था और जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए थे। लोग कह रहे थे कि वह सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करने पर मूर्छित हो गया, क्योंकि उसको होश नहीं आया। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए। यह सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहां आए। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी, विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वे महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे। अतएव जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो पहले ही यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। मुकुंद दत्त ने आगे कहा, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको अपने साथ लाए हैं। महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए। हम सब अभी आए हैं और अब उन्हीं की खोज में हैं। सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए हैं। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात हमारी भेंट संयोग से हो गई। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाकर सबने देखा कि महाप्रभु अचेतावस्था में हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, किंतु साथ ही प्रसन्न थे कि उन्हें महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। सार्वभौम सभी भक्तों से मिले और उनका समुचित स्वागत किया। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रसन्न थे। तब भट्टाचार्य ने उन सब को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और मार्गदर्शक के रूप में अपने पुत्र चंदनेश्वर को उनके साथ भेजा। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से भाव विभोर हो गए। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए तो सारे भक्तों ने उन्हें पकड़कर सुस्थिर किया। उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी विग्रह पर अर्पित एक माला ले आया और नित्यानंद प्रभु को समर्पित की। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी हुई इस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में वे सभी उस स्थान पर लौट आए जहां महाप्रभु रुके थे। तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु की चरण धूली ग्रहण की। भट्टाचार्य ने सबसे कहा, कृपया तुरंत ही दोपहर का स्नान कर ले। आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्चिष्ट दूंगा। समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तजन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाए जाने की व्यवस्था की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुख पूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गई। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद का वितरण कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली तरकारियां दें। आप सारे भक्तों को पीठा केक तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य रबड़ी दे सकते हैं। यह सुनकर भट्टाचार्य दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया है। यह कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार का पीठा तथा पाना दूध से निर्मित व्यंजन खिलाया। बाद में उन्हें हाथ मुंह तथा पांव धोने के लिए जल दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करने गए। भोजन करने के बाद वे महाप्रभु के पास लौट आए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायणाय, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कृष्णे मतिरस्तु कहा, आपका ध्यान कृष्ण में हो। ये वचन सुनकर सार्वभौम समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी हैं। तब सार्वभौम ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आश्रम स्थिति को जानना चाहता हूँ। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और इनका पहले का नाम विश्वंबर मिश्र था। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती भी लगते हैं। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे, इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले, आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतएव मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। भट्टाचार्य से यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से उनसे इस प्रकार बोले, क्योंकि आप वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु तथा उनके शुभ चिंतक भी हैं, आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। मैं तो अभी तरुण सन्यासी हूँ और मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, अतएव मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैं यहाँ आपका संग करने आया हूँ और अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। क्या आप कृपया सभी प्रकार से मेरा पालन करेंगे? आज जो घटना घटी है वह मेरे लिए महान विपत्ति थी, किंतु आपने मुझे उससे उबार लिया है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आप जगन्नाथ मंदिर में विग्रह दर्शन करने अकेले न जाएं। अच्छा होगा कि आप या तो मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ जाएं। महाप्रभु ने कहा, मैं अब कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, गोस्वामी जी को ले जाओ और उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान में है, वहीं इनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उस घर तक ले गए और उन्हें पानी, पानी के पात्र, नांद आदि दिखला दिया। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ भगवान का शयोत्थान भोर के समय उठना दिखाने ले गए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। वहां पहुंचने पर सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, यह सन्यासी अत्यंत नम्र एवं विनीत स्वभाव का है और देखने में अत्यंत सुंदर है, फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। उन्होंने किस संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया है और इनका नाम क्या है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उन्हें संन्यास देने वाले गुरु महाभाग्यवान केशव भारती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण नाम अत्युत्तम है, किंतु ये भारतीय संप्रदाय के हैं, अतएव ये द्वितीय श्रेणी के सन्यासी हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से सन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। भट्टाचार्य ने पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपनी पूर्ण यौवनावस्था में हैं, वे सन्यास के नियमों का किस तरह पालन कर पाएंगे? मैं इन्हें निरंतर वेदांत दर्शन सुनाऊंगा, जिससे वे अपने वैराग्य में स्थिर रहे और इस तरह अद्वैत मार्ग में प्रवेश कर सके। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार कराकर उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित किया, हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते। इनमें भगवता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्व वेताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन हैं। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, अनुमान द्वारा नहीं। आचार्य ने आगे कहा, यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और अनेक शिष्यों के गुरु हैं। निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान की रंच मात्र कृपा से भी वंचित हैं। अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहिए, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु बाबा विष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके, इसे ही सामान्यतया माया ब्रह्म कहा जाता है। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वह वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्काए और इस प्रकार कहने लगे। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद्ध न हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध न माने। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है, यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता शास्त्रज्ञ मानते हैं, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार नहीं होता। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीला अवतार नहीं होता, इसीलिए वे त्रियुग कहलाते हैं और यह उनके पवित्र नामों में से एक है। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के तीन विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत लाल तथा पीत। इस द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण श्याम शरीर धारण किया है। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझसे इसके विषय में सुने। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार पीत वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों यथा नित्यानंद प्रभु तथा स्वांशों यथा गदाधर के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर को साथ रखते हैं। गौर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है, उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है, उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है, वे चतुर आश्रम संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत आत्म संयमी होंगे। ये मायावादी सन्यासियों से इस कारण भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उद्धरण देंगे। आपके शिष्यों के झूठे तर्क तथा दार्शनिक शब्दांडंबर उनके दोष नहीं है। उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न है और जिनकी विभिन्न शक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली हैं। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के आत्म साक्षात्कार को माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंगा माया की शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गोपीनाथ आचार्य से यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरी ओर से आमंत्रित करके यहां बुलाएं। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को दीजिए। उसके बाद यहाँ लौट कर आइए और तब मुझे भली भांति शिक्षा दीजिए। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, अतएव उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी उनकी निंदा करके, कुछ उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। श्री मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्षात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे अत्यंत दुखी तथा रुष्ट हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशानुसार गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त दोनों ने ही भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनसे उनको मानसिक दुख पहुंचता था। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप इस तरह न बोलें। सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल एवं कृपालु हैं। वे मेरे प्रति वात्सल्य के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं। इसमें कौन सा दोष है? अगले दिन प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और सन्यासी के आदराग स्वयं भूमि पर बैठ गए। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया और स्नेह तथा भक्ति के कारण महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। भट्टाचार्य ने कहा, वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है अतएव आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन का अध्ययन करें और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन का 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु न तो कुछ बोले न ही इसका संकेत दिया कि यह सही है या गलत। वे केवल बैठे बैठे भट्टाचार्य की बातें सुनते रहे। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप लगातार 7 दिनों से मुझसे वेदांत दर्शन सुन रहे हैं, आप मौन धारण किए हुए सुनते रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सही है या गलत। अतएव मैं यह नहीं समझ पा रहा कि आप वेदांत दर्शन को वास्तव में समझ पा रहे हैं या नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा, मैं मूर्ख हूँ, फलतः मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता। आपने आदेश दिया है, अतएव मैं आपसे इसे सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं तो सन्यासी धर्म के पालन के लिए ही सुनता हूँ। दुर्भाग्यवश आप जो अर्थ कह रहे हैं उसका मैं लेख मात्र भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं मानता हूँ कि आप नहीं समझ रहे, किंतु जिसकी समझ में नहीं आता वह भी तो विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा करता है। आप लगातार सुनते जा रहे हैं किंतु मौन धारण किए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में आपके मन में है क्या। तब महाप्रभु ने यह कहते हुए अपने मन की बात प्रकट की, मैं प्रत्येक सूत्र का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। वेदांत सूत्र के श्लोकों का स्पष्ट तात्पर्य उन्हीं में निहित है, किंतु आपने जितने अन्य तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं उन्होंने सूत्र के अर्थ को बादल की तरह ढक लिया है। आप ब्रह्म सूत्र का मुख्य अर्थ नहीं बतला रहे। ऐसा लगता है कि आपका कार्य वास्तविक अर्थ को छिपाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, वेदांत सूत्र समस्त उपनिषदों का सार है, इसलिए उपनिषदों में जो भी मुख्य अर्थ है वह सब वेदांत सूत्र या व्यास सूत्र में भी अंकित है। प्रत्येक सूत्र के मुख्य प्रधान अर्थ को बिना किसी अनुमान के स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु आप तो मुख्य अर्थ को त्याग कर अपने मनोकल्पित अर्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अन्य प्रमाण भी हैं, किंतु वैदिक प्रमाण को सर्वोपरि मानना चाहिए। वेदों में वर्णित सिद्धांतों का मुख्य अर्थ सर्वोत्तम प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शंख तथा गोबर किन्हीं जीवों की अस्थियां और विष्ठा मात्र है, किंतु श्रुति वाक्य है कि ये दोनों अत्यंत पवित्र हैं। वैदिक कथन स्वतः प्रमाण होते हैं, वेदों में वर्णित प्रत्येक कथन को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपनी खुद की मनोकल्पना से उसकी व्याख्या करते हैं तो वैदिक प्रमाण की सत्ता तुरंत नष्ट हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, श्रील व्यास देव द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। इसके अर्थ का अनुमान लगाने की चेष्टा सूर्य के इस प्रकाश को केवल बादल से आच्छादित करने के समान है। सारे वेदों तथा वैदिक सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले अन्य साहित्य का निश्चित मत है कि पर ब्रह्म ही परम सत्य है, सबसे महान है और भगवान का एक पहलू है। वास्तव में परम सत्य एक पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सभी ऐश्वर्यों से पूर्णतया युक्त है। आप उनकी व्याख्या निराकार तथा निर्विशेष के रूप में कर रहे हैं। वेदों में जहाँ कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है, वहाँ वेदों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान निराकार तथा साकार इन दो रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है तो वह सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण न हो। इस विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य में प्रवेश करती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की तीन श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं था, अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है, जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए उसकी पूर्ति पुराणों के वाक्यों द्वारा की जाती है। नंद महाराज, गोप तथा ब्रज भूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन परम ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। अपाणी पाठ, वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पावों का निषेध करता है, फिर भी यह बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप चह दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन मूल शक्तियां होती हैं, तो क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है। एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव कहलाती है। तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है, जो जीव को ईश्वर विहीन निरीश्वर बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूरित करती है। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, यद्यपि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के तीन प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर लेती है। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर यह जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें मूलतः तीन शक्तियां हैं, हालदिनी आनंद, संदिनी शाश्वतता तथा संवित ज्ञान शक्ति। ये सभी मिलकर चित्त शक्ति कहलाती हैं और भगवान में ये पूर्ण रूपेण पाई जाती हैं। भगवान के अंश रूप जीवों के लिए भौतिक जगत में हालदिनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है और कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण हैं। इन तीनों अंशों सत चित आनंद में आध्यात्मिक शक्ति तीन विभिन्न रूप ग्रहण करती है। आध्यात्मिक शक्ति के तीन अंश हालदिनी आनंद अंश, संदिनी सत अंश तथा संवित चित या ज्ञान अंश कहलाते हैं। हम इन तीनों के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी तीन अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा तटस्था तथा बहिरंगा। ये सभी उनकी प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति में छह प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते, यह आपकी भारी दृष्टता के कारण है। भगवान शक्तियों के अधीश्वर हैं और जीव उनका दास है। भगवान तथा जीव में यही अंतर है, किंतु आप यह कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव एक ही है। भगवद गीता में जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्था शक्ति बतलाया गया है, फिर भी आप कहते हो कि जीव भगवान से पूर्णतया भिन्न है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये मेरी आठ पृथक शक्तियां हैं। इन भौतिक निष्कृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक अन्य शक्ति है, जो कि आध्यात्मिक शक्ति है, और हे महाबाहु, यह जीव है। सारा भौतिक जगत जीवों के द्वारा धारण किया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है, किंतु आप इसे भौतिक सत्व गुण की उपज बतला रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता वह निश्चय ही पाषंडी है। ऐसे व्यक्ति को न तो देखना चाहिए न ही उसका स्पर्श करना चाहिए। निसंदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है। क्योंकि बौद्ध गण वेदों की सत्ता को नहीं मानते अतएव नास्तिक माने जाते हैं, किंतु जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं वे बौद्धों से भी अधिक नास्तिक हैं। श्रील व्यास देव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का वाक्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यह स्थापित करना है कि विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूपांतर से उत्पन्न हुआ है। पारस पत्थर लोहे का स्पर्श करके ढेरों सोना उत्पन्न करता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित बना रहता है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु उनका सनातन दिव्य स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार परम सत्य रूपांतरित होता है। इस सिद्धांत के बल पर मायावादी दार्शनिक श्रील वेद व्यास में दोष दिखलाकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। इस तरह वे वेदांत सूत्र में त्रुटि निकालते हैं और विवर्तवाद की स्थापना करने हेतु वे इस विषय में अपना अर्थ लगाते हैं। विवर्तवाद तभी प्रभावी होता है जब जीव अपनी पहचान शरीर के रूप में करे, किंतु जहां तक विराट जगत का संबंध है इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह नश्वर अवश्य है। ओंकार की दिव्य ध्वनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शब्द रूप है। सारा वैदिक ज्ञान तथा यह विराट जगत भगवान के इस शब्द रूप से उत्पन्न हुए हैं। तत्वमसि तुम वही हो, गौण ध्वनि प्रादेशिक वाक्य जीव की जानकारी के लिए है, किंतु मुख्य ध्वनि ओंकार है। शंकराचार्य ने ओंकार को महत्व न देकर तत्वमसि ध्वनि पर बल दिया है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को काल्पनिक कहकर आलोचना की और उसमें सैकड़ों दोष दिखलाए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य का पक्ष लेते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। भट्टाचार्य ने छद्म तर्क समेत विविध प्रकार के मिथ्या तर्क प्रस्तुत किए और अपने प्रतिपक्षी को हराने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे तर्कों को खंडित किया और अपना मत स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सभी संबंधों के केंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी भक्ति करना अभिधेय मनुष्य का वास्तविक कर्म है और भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य प्रयोजन है। वैदिक साहित्य में इन तीनों विषयों का वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति भिन्न तरीके से वैदिक साहित्य की विवेचना करने की चेष्टा करता है तो वह मात्र कल्पना है। स्वतः प्रमाण रूप वेद वाक्य के विषय में अनुमान लगाने को कोरी कल्पना ही समझना चाहिए। वास्तव में इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। उन्होंने केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन किया है। उन्हें किसी न किसी प्रकार के अनुमान की कल्पना करनी थी, अतएव उन्होंने ऐसा वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया जो पूर्णतया नास्तिक है। शिवजी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। शिवजी ने भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को बतलाया, कलियुग में मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मिथ्या शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूंगा, जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे स्तंभित रह गए और कुछ भी न बोल सके। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप विस्मित न हो, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मानव कर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं कि आत्मतुष्ट आत्मा राम संत भी भगवान की भक्ति करते हैं। उनके गुण अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हैं। जो आत्मतुष्ट आत्मा राम हैं और बाह्य भौतिक इच्छाओं से विरक्त हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि कृष्ण के गुण दिव्य हैं और उनके कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि वे दिव्य आकर्षक लक्षणों से युक्त हैं। आत्मा राम श्लोक सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया, हे महोदय, कृपया इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। मैं इस पर आपकी व्याख्या सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, पहले मुझे अपनी व्याख्या सुनाएं, तब मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बताने की चेष्टा करूंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्मा राम श्लोक की व्याख्या करनी शुरू की और तर्क शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने अनेक प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की। भट्टाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर आत्मा राम श्लोक की व्याख्या 9 विविध प्रकारों से की। उनकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मंद हास करते हुए बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, आप तो साक्षात स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति के समान हैं। निसंदेह इस जगत में शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है। हे प्रिय भट्टाचार्य, आपने अवश्य ही इस श्लोक की व्याख्या अपने विस्तृत पांडित्य के बल पर की है, किंतु आप जान लीजिए कि इस पांडित्य पूर्ण व्याख्या के अतिरिक्त भी इस श्लोक का अन्य तात्पर्य है। सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य के नमो अर्थों को छुए बिना श्लोक की व्याख्या प्रारंभ की। आत्माराम श्लोक में 11 शब्द हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके इनकी व्याख्या की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक शब्द को लेकर उसके साथ आत्माराम शब्द को जोड़ा। इस तरह उन्होंने आत्माराम शब्द की व्याख्या 18 भिन्न प्रकार से की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी विभिन्न शक्तियां तथा उनके दिव्य गुण, ये सभी अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं। उनकी पूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। ये तीनों आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न सिद्ध जिज्ञासुओं को आकृष्ट कर लेते हैं तथा अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधनों को आच्छादित कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुखदेव गोस्वामी तथा सनक, सनक कुमार, सनातन और सनंदन नामक 4 ऋषियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इस श्लोक की व्याख्या की। इस तरह महाप्रभु ने विविध अर्थ तथा व्याख्याएं प्रस्तुत की। श्री चैतन्य महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य चकित रह गए। तब वे समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं और उन्होंने स्वयं को निम्नलिखित शब्दों से धिक्कारा। चैतन्य महाप्रभु निश्चय ही साक्षात भगवान कृष्ण हैं। उन्हें न समझ पाने के कारण और अपने पांडित्य पर अत्यंत गर्वित होने के कारण मैंने अनेक अपराध किए हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आप को अपराधी कहकर धिक्कारा और महाप्रभु की शरण ग्रहण की तो महाप्रभु का उन पर कृपा करने का मन हुआ। उन पर कृपा करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विष्णु रूप का दर्शन कराया। उन्होंने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे उनके समक्ष कृष्ण के अपने मूल रूप में श्याम वर्ण तथा अद्रों पर वंशी धारण किए हुए प्रकट हुए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा तो वे तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम करने के लिए गिर पड़े। फिर वे खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी तत्व स्फुरित हो गए और वे भगवान नाम का कीर्तन तथा भगवत प्रेम का सर्वत्र वितरण करने के महत्व को समझ सके। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अल्प समय में 100 श्लोक रच दिए। निसंदेह स्वर्ग लोक के पुरोहित बृहस्पति भी इतनी शीघ्रता से श्लोकों की रचना नहीं कर सकते थे। 100 श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया और भगवत प्रेम से अभिभूत होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत अचेत हो गए। भगवत प्रेम के भावावेश के कारण भट्टाचार्य की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनका शरीर स्तंभित था। वे पुलकित हो गए और उनको पसीना आ गया। वे कांपने और थरथराने लगे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते और कभी महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए नीचे गिर पड़ते। सार्वभौम भट्टाचार्य को इस बाबा वेश में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद भट्टाचार्य को इस तरह नाचते देखकर हंस पड़े। गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य की यह गति बना दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप भक्त हैं, आपकी संगति के कारण ही जगन्नाथ भगवान ने इन पर यह कृपा की है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को शांत किया। शांत होने पर उन्होंने महाप्रभु की अनेक प्रकार से स्तुतियां की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपने सारे जगत का उद्धार किया है, किंतु यह कोई बड़ा काम नहीं है, किंतु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया, जो निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति का काम है। तर्कशास्त्र संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी जड़ बुद्धि लोहे की छड़ के समान बन गई थी, फिर भी आपने मुझे द्रवित कर दिया। अतएव आपका प्रभाव अत्यंत प्रचंड है। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा की गई स्तुति सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर लौट आए और भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य के माध्यम से उन्हें वहीं पर भोजन करवाया। अगले दिन प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर गए और उन्होंने भगवान के शया से उठने के दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें जगन्नाथ जी को अर्पित फूल मालाएं तथा प्रसाद ला कर दिए। इससे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रसाद तथा माला को सावधानी से कपड़े में बांध कर श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर तेजी से बढ़े। वे सूर्योदय होने से थोड़ा पहले भट्टाचार्य के घर पधारे। ठीक उसी समय भट्टाचार्य सो कर जगे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उठते ही स्पष्ट रूप से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृष्ण नाम का उच्चारण करते सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बाहर खड़े देखा तो आतुरता से वे उनके पास गए और उनके चरण कमलों की वंदना की। भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बैठने के लिए आसन दिया और फिर दोनों ने आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद खोला और उसे भट्टाचार्य के हाथों पर रख दिया। उस समय भट्टाचार्य ने न तो मुंह धोया था, न स्नान किया था, न ही प्रातःकालीन नित्य कर्म किया था, फिर भी वे जगन्नाथ जी का प्रसाद पाकर अत्यंत आनंदित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य के मन की सारी जड़ता दूर हो गई थी। उन्होंने निम्नलिखित दो श्लोक पढ़कर उस प्रसाद को ग्रहण किया। भट्टाचार्य ने कहा, भगवान का महाप्रसाद पाते ही उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, भले ही वह सूखा बासी या दूर देश से लाया हुआ क्यों न हो। इसमें देश व काल का विचार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि यों ही भगवान कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हो, त्यों ही उसे ग्रहण कर लिया जाए। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके लिए देश तथा काल के विषय में कोई नियम नहीं है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश है। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवत प्रेम में भावाविष्ट हो गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन किया। प्रभु तथा दास ने एक दूसरे का आलिंगन किया और दोनों नाचने लगे। वे एक दूसरे के स्पर्श मात्र से भावाविष्ट हो गए। जब वे नाचने लगे और आलिंगन करने लगे तो उनके शरीरों में आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगे। उनको पसीना आ गया, वे कांपने तथा रोने लगे और महाप्रभु भावावेग में बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मैंने बड़ी आसानी से तीनों लोकों को जीत लिया है। आज मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मेरी समझ में आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। निसंदेह आज आपने निष्कपट होकर कृष्ण के चरण कमलों की चरण ग्रहण की है और कृष्ण भी निष्कपट होकर आपके प्रति अत्यंत दयालु हो गए हैं। हे प्रिय भट्टाचार्य, आज आप देहात्मक बुद्धि के भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। आपने माया के बंधन को खंड खंड कर दिया है। आज आपका मन कृष्ण के चरण कमलों की चरण ग्रहण करने के योग्य हुआ है, क्योंकि आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवत प्रसाद ग्रहण किया है। जब मनुष्य निष्कपट भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की चरण ग्रहण करता है तो असीम दयालु भगवान उस पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखलाते हैं। इस तरह वह अज्ञान के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है। जिसकी बुद्धि देहात्मक बोध में लगी रहती है और जो यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, वह कुत्तों तथा प्यारों का उपयुक्त भोजन है। परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते। सार्वभौम भट्टाचार्य से ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। उस दिन से भट्टाचार्य मुक्त हो गए, क्योंकि उनका मिथ्या अभिमान टूट चुका था। उस दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना। उस दिन से वे केवल भक्ति योग के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव संप्रदाय में दृढ़ता के साथ अवस्थित हुए देखकर उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य नाचने, ताली बजाने और हरि हरि का उच्चारण करने लगे। अगले दिन भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर गए, किंतु मंदिर पहुंचने के पहले वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। महाप्रभु से मिलने पर भट्टाचार्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दुर्मति का वर्णन किया। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कलह और दिखावे के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बृहन्नारदीय पुराण के हरेर नाम श्लोक की विस्तार से व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या सुनकर चकित रह गए। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को स्मरण कराया, प्रिय भट्टाचार्य मैंने आपसे जो कुछ पहले कहा था अब वह घटित हो गया। गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, मैं आपका संबंधी हूँ और आप भक्त हैं, अब आपकी कृपा से महाप्रभु ने मुझ पर कृपा की है। आप महाभागवत उच्च कोटि के भक्त हैं और मैं तर्क शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध होने के कारण भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विनीत वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भट्टाचार्य का आलिंगन करके उनसे कहा, अब आप मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाएं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जगदानंद तथा दामोदर के साथ घर लौट आए। भट्टाचार्य अपने साथ भगवान जगन्नाथ का बहुत सा सर्वोत्तम प्रसाद ले आए थे। उन्होंने यह सारा प्रसाद अपने ब्राह्मण सेवक तथा जगदानंद और दामोदर को दे दिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ताड़ पत्र पर दो श्लोकों की रचना की और वह ताड़ पत्र जगदानंद प्रभु को देते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दें। तब जगदानंद तथा दामोदर प्रसाद वह लिखा ताड़ पत्र लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, किंतु मुकुंद दत्त ने वह ताड़ पत्र महाप्रभु को दिए जाने के पूर्व ही जगदानंद के हाथ से ले लिया। तब मुकुंद दत्त ने कमरे की बाहरी दीवार पर दोनों श्लोकों को लिख दिया। इसके बाद जगदानंद ने मुकुंद दत्त से ताड़ पत्र ले लिया और उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों को पढ़ते ही ताड़ पत्र को तुरंत फाड़ डाला, किंतु सारे भक्तों ने बाहरी दीवार पर इन श्लोकों को पढ़ा और उन्हें कंठस्थ कर लिया। ये श्लोक इस प्रकार थे, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावना अमृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की चरण ग्रहण करता हूँ। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की चरण ग्रहण करे जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित ये दोनों श्लोक उनके नाम तथा यश की घोषणा ढोल की थाप के समान उच्च स्वर से सदैव करते रहेंगे, क्योंकि ये श्लोक सारे भक्तों के कंठ का रत्नहार बन चुके हैं। निसंदेह सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। महाप्रभु की सेवा के अतिरिक्त वे दूसरा कुछ भी नहीं जानते थे। भट्टाचार्य सदैव माता शची के पुत्र एवं समस्त सद्गुणों के आधार श्री कृष्ण चैतन्य के नाम का कीर्तन करते थे। निसंदेह नाम कीर्तन ही उनका ध्यान बन गया। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और नमस्कार करने के बाद एक श्लोक सुनाने लगे। वे श्रीमद् भागवत से ब्रह्मा जी की एक स्तुति सुनाने लगे, किंतु उन्होंने श्लोक के अंतिम दो अक्षरों को बदल दिया। यह श्लोक था, जो आपकी अनुकंपा चाहता है और अपने विगत कर्मों से उत्पन्न सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहन करता है, जो मन वचन तथा शरीर से सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहता है और जो सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त बनने का पात्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आपत्ति की। उस श्लोक में मुक्त पदे शब्द आया है, किंतु आपने इसे बदलकर भक्ति पदे कर दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है, वह भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है। जो भक्ति से विमुख है उनके लिए ब्रह्म तेज में समा जाना एक प्रकार का दंड है। भट्टाचार्य ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को न मानने वाले निर्विशेषवादी तथा भगवान की निंदा करने और उनसे सदैव युद्ध करने वाले असुर ब्रह्म ज्योति में समाकर दंडित होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, उसके साथ ऐसा नहीं होता। मुक्ति पांच प्रकार की है, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सारिप्ति तथा सायुज्य। यदि शुद्ध भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो वह कभी कभी सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य या सारिप्ति मुक्ति को तो स्वीकार करता है, किंतु सायुज्य को कभी नहीं। शुद्ध भक्त तो सायुज्य मुक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उससे उसे भय तथा घृणा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त भगवान की तेज में समा जाने की अपेक्षा नरक जाना पसंद करेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान के शरीर में समा जाना तो उनके तेज में समा जाने से भी अधिक निंदनीय है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अंत में कहा, समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान किए जाने पर भी शुद्ध भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह भगवान की सेवा में लगे रहने से ही संतुष्ट रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पदे शब्द का अन्य अर्थ है मुक्ति पद, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। क्योंकि सभी प्रकार की मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में विद्यमान रहती हैं, अतएव वे मुक्ति पद कहे जाते हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवां विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि मैं इन दोनों अर्थों से श्री कृष्ण को समझ सकता हूँ, तो फिर श्लोक को बदलने से क्या लाभ? सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं इस श्लोक का वह पाठ नहीं कर पा रहा था। यद्यपि आपकी व्याख्या सही है, किंतु मुक्ति पद पद में असमंजसता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुक्ति शब्द पांच प्रकार की मुक्तियों का द्योतक है, किंतु सामान्यतया इसका मुख्य अर्थ सायुज्य की प्रतीति है। मुक्ति शब्द की ध्वनि मात्र से मन में घृणा तथा भय का भाव उत्पन्न होता है, किंतु जब हम भक्ति शब्द कहते हैं तो हमारे मन में दिव्य आनंद की सहज अनुभूति होती है। यह व्याख्या सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भट्टाचार्य का दृढ़ आलिंगन किया। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन पढ़ने और पढ़ाने का अभ्यस्त था, वही अब मुक्ति शब्द से घृणा कर रहा था। यह सब केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। जब तक स्पर्श मणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना न बना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात पत्थर को स्पर्श मणि के रूप में नहीं जान सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य की दिव्य वैष्णवता देखकर हर व्यक्ति यह जान सका कि चैतन्य महाप्रभु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण कमलों की चरण में आ गए। मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार महाप्रभु की सेवा में सदा लगे रहते थे। मैं इसका भी विस्तार से वर्णन करूंगा कि किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने भिक्षा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सम्यक सेवा की। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के मिलन से संबंधित इन लीलाओं को सुनता है, तो वह तुरंत ही मानसिक तर्क वितर्क तथा सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे